हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले कि हम 25वें श्लोक को देखें, 24 में क्या चर्चा हुई थी इसको हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें बोला गया 24वें श्लोक में, पार्थिवाद दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद् ब्रह्म दर्शनम। भगवान कृष्ण परमात्मा या परमेश्वर, वही विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। शिव जी तमोगुण को अध्यक्षता करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को और शिव विष्णु भगवान सत्वगुण को। अब किस प्रकार से इन सब में विष्णु की उपासना करना से व्यक्ति को श्रेय की प्राप्ति होगी, उसको उदाहरण से समझाया गया। ओह माता जी हैं, हरे कृष्ण, वेलकम। तो उसको एक उदाहरण से समझाया जा रहा है 24वें श्लोक में। उसमें क्या कहा गया कि देखिए, भूमि से निकली है लकड़ी, और लकड़ी जो है वह उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें अपना कोई अपना कार्य करने की क्षमता नहीं होती। प्रवृत्ति समझ रहे हैं, वो मूव नहीं करती, जड़ है और उसमें प्रकाश नहीं देता है, लकड़ी में प्रकाश भी नहीं होता है। लकड़ी से उत्पन्न होता है धुआं, तो धुआं में प्रवृत्ति तो रहती है, चलायमान होता है लेकिन प्रकाश नहीं होता। लेकिन अग्नि जो है वह उसमें प्रवृत्ति भी होती है और उसमें प्रकाश भी होता है। तो उसी प्रकार से तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण। रजोगुण में कुछ कुछ भगवान की अनुभूति हो सकती है, लेकिन क्योंकि रजोगुण में विक्षेप होता है, मन इधर उधर भागता है, तो भगवान की अनुभूति ठीक से हो नहीं पाती। जैसे तालाब का पानी अगर बहुत चलायमान हो तो आप उसके नीचे जो है वस्तु नहीं देख पाते। तो सतगुण में ब्रह्म के दर्शन की अनुभूति होती है। सतगुण एक ऐसा कहा जाए, सतगुण के द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभव के धरातल तक पहुंचता है। पूरी अनुभूति तो शुद्ध सत में ही होती है, ये बात हमने सीखी थी। तो यहां बात हो रही है कि जिस प्रकार से सतगुण, जिस प्रकार से अग्नि के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं और हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार सतगुण से व्यक्ति ब्रह्म का दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो सतगुण क्योंकि श्रेष्ठ है, इसलिए जो अधिष्ठाता देव हैं भगवान विष्णु, उनकी उपासना करने से व्यक्ति को श्रेय की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म दर्शन प्राप्त अनुभूति होती है, आध्यात्मिक अनुभूति होती है। यह है 2 मिनट में इसका रिकैप। अब आपको पूरा सुनना है तो हमने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया, उसको आप सुन सकते हैं। 15 दिन हो गए ना क्लास पीछे हुए, कितना, एक हफ्ता हुआ होगा, पिछले हफ्ते क्लास नहीं हुआ, संडे को क्लास नहीं तो वहां हुई थी ना, वो मैंने आधे घंटे की क्लास भेजी है, तो उसको सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस 25वें श्लोक को सुन रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें पूर्व के भक्तों ने क्या सदाचार किया है उसको स्थापित करने के लिए। सदाचार मतलब सदाचरण, अच्छा आचरण, किस प्रकार से उन्होंने भी भगवान की ही पूजा करी है, यह स्थापित करने के लिए 25वें श्लोक को बोल रहे हैं। थीम समझ में आ रही है भाई? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे हम पूछते हैं आप किसकी पूजा करते हैं, माता जी हम दुर्गा जी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मम्मी करती हैं। मम्मी क्यों करती हैं? क्योंकि दादी करती हैं। और दादी क्यों करती हैं? क्योंकि परदादी करती हैं। तो ये से कहते हैं परंपरा में सदाचार का पालन करना, जैसे पूर्ववर्ती लोगों ने किया वैसे हम कर रहे हैं। अब उसका शास्त्रीय आधार क्या है वह तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हमारे पास शास्त्रीय आधार भी है। और यहाँ पे सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि पूर्व की ऋषि मुनियों ने भी ऐसा ही किया, भगवान विष्णु की ही उपासना करके परम श्रेय की प्राप्ति करी। ये जो भक्ति करते हैं उनको समझ में आने लगता है कि भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, और उनको आध्यात्मिक सुख जो प्राप्त होता है उससे भी उनको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ यही चीज है, अब इसी को बढ़ाना है। और ये कैसे प्राप्त हुआ? भगवान की भक्ति करके। देखिए, जब आप लोग भक्ति करना शुरू करते हैं, हम सब लोग भक्ति करना शुरू करते हैं, थोड़ा डाउट रहता है क्या ये जो हरि नाम का सुख बोला जा रहा है ये है भी या ऐसे खाली किताबों में लिखा है? डाउट रहता है शुरुआत में, यार हमको तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। लेकिन जब हम भक्ति करते रहते हैं, जब हमको डायरेक्ट अनुभव होने लगता है तो आपको रहते हैं हाँ शास्त्र में जो बात लिखी है वो सही है। अब मगर भक्ति करता रहूंगा तो फिर आगे भी मुझे और अधिक अनुभव और अधिक सुख प्राप्त होगा, अब चेतना में प्रकाश प्राप्त होगा। चेतना में प्रकाश का मतलब समझते हैं ना, एकदम कुछ हम सोच नहीं पाते थे, हम सोच सकते हैं, समझ पाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि छोड़ने का भी कोई प्रयास करे फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं, फिर लेके आ जाते। तो ये बड़ा भक्ति का, जो हम शास्त्र में सुनते हैं और अपने जीवन में घटित हुए देखते हैं तो हमारी श्रद्धा भी बढ़ जाती है। तो अब हम लोग आज सदाचार के बारे में सीख रहे हैं, तो मेरे पीछे बोलिएगा, भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवन्तं अधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नु तानिह। मुनियों अथ आग्रे, अथा मतलब इस प्रकार मुनियों ने अग्रे पहले भेजरे मतलब भगवान का भजन किया, सेवा करी। किसकी सेवा करी? भगवंतम अधोक्षजम, भगवान की। जो कैसे भगवान है? अधोक्षज। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान इंद्रियों के परे हैं और हम सेवा कैसे करते हैं? इंद्रियों से। ये कैसे होगा? इंद्रियों के परे जो व्यक्ति है उसके इंद्रियों से कैसे सेवा हो जाएगी? तो ये प्रोसेस है भक्ति का। भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। जैसे आप देखोगे भगवान को हम भोग कैसे लगाएं, गजब हैरान हूं मैं भगवान तुम्हें कैसे रे जाऊं मैं, सुना है आपने। ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे खिलाओ, लेकिन कोई कठिनाई नहीं है आप लोग। माता जी लोग ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, खिलाने की बात छोड़ी है ना। और अब देखिए भक्त का भाव, कोई कह रहे भगवान को ठंड लगती है क्या? हाँ बिल्कुल लगती है, और इसीलिए भक्त लोग कपड़े का स्टाइल चेंज करेंगे। ठंड बनाने वाला कौन है? भगवान है। लेकिन भगवान भक्तों के संग व्यक्तिगत आदान प्रदान करते हैं। भक्त सोचता है भगवान को ठंड लगती है, तो भगवान को ठंड लगती है, बिल्कुल ठंड लगती है। असम सोचे भगवान को भूख नहीं लगती। सनातन गोस्वामी जी उनको लिट्टी लिट्टी होती है, लिट्टी बना के दिया करते थे, उसमें नमक भी डालते नहीं थे। तो भगवान बोले उनको, अरे भाई नमक तो डाल दो कम से कम। तो बोले आज आप नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, मैं कहां से लाऊंगा। तो भगवान इस प्रकार से हैं, वो भक्त के प्रेम के भूखे हैं, वो आपके प्रेम के भूखे हैं, आपकी सेवा चाहते हैं वो। और भक्त सेवा करते हैं तो उसको वो बहुत मतलब बहुत क्या कहते हैं उसको, कृतज्ञ कृतज्ञ रहते हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं भगवंतम अधोक्षजम। ये ध्यान देना चाहिए कि अधोक्षज शब्द एक रिजर्व अर्थ रखता है। ऐसा नहीं कि हम शिव जी या ब्रह्मा जी या किसी अन्य देवता को अधोक्षज कह सकते हैं, ना। अधक्षज मतलब जो आंखें हैं, अक्ष के उपलक्षण से आंखों से समझ लेना चाहिए सारी इंद्रियां। वह भगवान जो सारी इंद्रियों के परे हैं, किसी भी इंद्रिय अनुभूति के परे हैं, उनको अधोक्षज कहते हैं, और वो हैं भगवान विष्णु। अब आप पिछले के श्लोकों से शायद एक भ्रम में पढ़ सकते हैं कि बोल रहे हैं सत्व की मूर्ति, तो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु जो है वह सत्वगुण की मूर्ति है। लेकिन देखिए क्या शब्द है अगला, सत्वम विशुद्धम क्षेमाया। वो सत्व नहीं है, उनका जो स्वरूप है वो सत्वगुण का बना नहीं है, किसका बना है? विशुद्ध सत्व। अब इसका अर्थ क्या होता है, मैं कई बार इसको बोल चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा। रजगुण तमगुण को अगर हटा दें तो विशुद्ध सत्व रह जाता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? हाँ मैं जानबूझ के गलत बोला, ऐसा नहीं है। रजगुण तमगुण को हटा देंगे तो सत्वगुण जो बचेगा वो विशुद्ध सत्व, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि सत्वगुण से आप पूरी तरह से कभी रजगुण तमगुण को हटा ही नहीं सकते। एक बात, ये हमेशा मिश्र रहता है। इससे परे की स्थिति है वसुदेव स्थिति, दिव्य स्थिति, तो उसको विशुद्ध सत्व कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। शिमाया कल्पन्ते येन तानिह, शिमाय का अर्थ क्या है? परम लाभ प्राप्त करने के लिए। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व निर्णाम सिंह, इससे पहले वाले श्लोकों में आया था कि जो अपने परम श्री की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और वो कहते हैं ये अनुस्तान इह, जो लोग अपने शेम की प्राप्ति करना चाहते हैं वह भी उन्हीं लोगों का अनुसरण करते। श्लोक समझ में आ रहा है? भेजरे मुनियो थगरे अथा, इसलिए पूर्व के ऋषि मुनियों ने भगवान की ही पूजा करी अधोक्षज की। और जो इस जगत में अपना शेम चाहते हैं मतलब परम कल्याण चाहते हैं वह भी उनका ही अनुसरण करेंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा करी, उनका ही अनुसरण करके भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। इसके द्वारा सदाचार को स्थापित कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए, अरे ये लड़का ये फलाना व्यक्ति इस कोचिंग में पढ़ करके IIT में सेलेक्ट हुआ, तो उसका भाई क्या करेगा? उसी कोचिंग में जाएगा और पढ़ करके IIT में सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे होता है ना, तो पूर्व के लोगों ने ऐसा किया है, तुम भी ऐसा करो। और तो आप देखिए कि शास्त्र की बात तो है ही, हमारे सामने पूर्व के ऋषि मुनियों का आदर सदाचार है। हम किसी छोटे मोटे किसी फालतू आदमी को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो किसको हम फॉलो कर रहे हैं? महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं ना, सदैव भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें बड़ी स्पष्ट है। श्लोक समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूर्व के ऋषि मुनियों ने किनकी पूजा करी? भगवान विष्णु की करी। तो उसके द्वारा उनको परम कल्याण प्राप्त हुआ। तो अब जो उनका अनुसरण करके इस लोक में भी, यहाँ इस लोक में भी भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, और अगर वह अपना परम कल्याण चाहते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परम कल्याण चाहते हो, और कुछ चाहिए इस जगत में ही, यहां से उठ करके वहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, कोई और कुछ करना चाहते हैं, और देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन परम क्षेम चाहते हैं, परम कल्याण चाहते हैं, तो भगवान की पूजा करते हैं। अभी मैंने बहुत सुंदर श्लोक सीखा है 2417, ऐसे बोल देता हूं, बहुत सुंदर, आप लोग पढ़िएगा जाकर के। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगल क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बहुत सुंदर श्लोक है। तपस्वी नो, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, दान पर है, बहुत दान करता है, दान पर है, यशस्वी नो, बहुत यशस्वी है, उसने खूब तालाब खोदे और बहुत बड़े बड़े कार्य किए। मनस्वी नो, बहुत मननशील है, मनस मुनि है, मंत्रविद है, खूब जप कर रहा है और कुछ मंत्र मंत्र पढ़ रहा है। मनस्वी नो सुमंगल है, उसका बहुत सुंदर सदाचार है। ऐसा व्यक्ति क्षेम को प्राप्त नहीं होता है बिना यदर्पणम। अगर आपको ये सारी तपस्याएं, ये सदाचार, ये सुमंगल, ये मंत्र, ये मनन, ये भगवान को समर्पित नहीं है, तो क्षेम की प्राप्ति नहीं होगी, परम कल्याण की प्राप्ति नहीं। तो आचार्यगण क्या सुंदर टीका करते हैं, कहते हैं कुछ लाभ तो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो जगत में लोग हैं, कुछ तपस्वी हैं, कुछ मननशील है, उन्हें कुछ लाभ मिल जाता है, लेकिन परम कल्याण नहीं मिलेगा बिना भगवान को समर्पित किए। तो आप देख लीजिए इसको, और रिवर्स में देखिए कि अगर आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं, हरि नाम है, भागवत है, भगवान को भोग लगाना है, कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो क्षेम प्राप्त तो आपको होगा ही, ये बात ध्यान रखना चाहिए। भगवान को अर्पित नहीं करते तो खूब तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, क्षेम नहीं मिलेगा। और भगवान को प्राप्त समर्पित कर रहे हैं तो क्षेम, क्षेम मतलब समझ रहे हैं, परम कल्याण भगवत भाव प्राप्ति होगी ही। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा चल रही थी, कथा के बाहर जस्ट बाहर कोई भक्त बुक स्टॉल से लगाए हुए थे, उसमें छोटा सा लाइन लिखी थी कि भगवान को दिया गया एक कण भी एटम बॉम्ब की तरह हो जाता है। कुछ ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने कि कुछ थोड़ी सी भी आप भगवान की सेवा करेंगे तो महान भय से मुक्त कर देता है। तो भगवान की ही सेवा करना चाहिए। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा करी, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। कौन? भगवान। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा करी। यह है क्षेमाय का अर्थ। भौतिक परिस्थिति मतलब ये तीन गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इसकी वजह से जो बंधन में पड़े हुए हैं, इससे मुक्त होने के लिए और परम लाभ अर्थात भगवान के परम धाम जाने के लिए भगवान की पूजा करी। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। कितना सुंदर अर्थ है, केवल अनुसरण करने मात्र से। आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, किसका अनुसरण कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने भगवान की पूजा करी, भगवान के भक्त बने, भगवान के धाम गए, और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके पास चले जाएंगे। इसी संबंध में नारद मुनि 10,000 दक्ष के लड़कों को भक्त बना देते हैं, ब्रह्मचारी बना देते हैं। भक्त तो कोई दिक्कत नहीं, गांव जंगल में गए प्रचार भक्ति तपस्या करने के लिए, उनको प्रीचिंग कर दिया, क्विज के रूप में प्रीचिंग किया, तो समझ गया कि हमें अब घर नहीं वापस जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। उसके बाद जब उनने फिर नया सेट पैदा किया 2000 बच्चों का, 2000 था कि 1000 मुझे याद नहीं, यहां तक मुझे स्मरण है 2000, जो भी रहा हो 1000 हो, तो वो हो तो उनको कहा कि देखो भाई छोटे भाइयों को बड़े भाइयों का पालन पीछे जाना चाहिए, तो इतना ही बोला और वह भी ब्रह्मचारी बन गए। तो इसी प्रकार से मतलब भक्ति भक्ति क्या करके भगवान के धाम चले गए। तो यही बात यहाँ पे सीखी जा रही है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसा किया वैसे हमें करना चाहिए। छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ते हैं। धर्माचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बनाना, ठीक है, अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। क्या लाइन इसका अर्थ है? देखिए प्रायः लोग धर्म आचरण करते हैं, आप जानते हो, अर्थ प्राप्ति के लिए। वो चाहते हैं हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, और ये नहीं समझना है कि हम दुखालय में हैं, तो ये बात है। तो धर्म का ये प्रयोजन नहीं, प्रभुपाद यहां क्लियर कर रहे हैं कि धर्म का प्रयोजन है भगवत धाम की प्राप्ति। भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के धाम चला जाए, वापस कभी ना आना पड़े, ये अर्थ है। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ताकि हम थोड़ा और अधिक श्लोक कवर कर सकें। उद्देश्य है भौतिक बंधन से छूटना, मतलब ये जो पकड़ बनी हुई हमारे हृदय में भोग की लालसा, ये प्राप्त कर जाए, काश ये प्राप्त हो जाए, काश वो हो जाए, उससे छूट करके व्यक्ति मुक्त हो और दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन प्राप्त करे जहां भगवान ही प्रधान रहते हैं। बहुत सुंदर। हर व्यक्ति यहां पे अनलिमिटेड चाहता है, यस। और आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी देखो चलते चलते बहुत सारी शिक्षा मिल जाती है। मैं अभी आ रहा था, जो कि कोर्ट वाली रोड है उस पर एक बैनर लगा हुआ है, अनलिमिटेड लिकर मतलब क्या कह सकते हैं, असीमित दारू, असीमित वेज एंड नॉन वेज भोजन। मैंने कहा भले ही असीमित है लेकिन तुम तो सीमित हो, ऐसा तो नहीं है कि एक टैंक भर करके आप शराब पी जाएंगे या एक टैंक भर के मतलब 200 मुर्गे खा लेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद अनलिमिटेड जो यातना मिलेगी नरक में, उसका उसका वर्णन कोई नहीं कर रहा। हमें देखा अनलिमिटेड लिकर, अनलिमिटेड वेज नॉन वेज भोजन, ये जो भी, और उसके बाद तो खूब पिटाई होगी जम करके। तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट लिखता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्रता चाहता है, खूब खाने को हो, खूब खूब भोग करूं ये वो, लेकिन भगवान से अलग है सब कुछ। तो यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, ना खाने की ना घूमने की, जहां जितना चाहो खाओ पियो घूमो, कोई नौकरी की टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण सुबह से शाम तक पिकनिक ही करते हैं। आज ही मैं सुन रहा था कि भगवान जब लौट के आते हैं वो गायों को दुहा जाता है तो वो नाचते हैं, बस उस टाइम भी वो नाचते ही रहते हैं। कथा गानम नाट्यम गमन अपि, ये ब्रह्म संहिता पढ़ते हो जाने, कथा क्या है गानम, बोल ही नहीं रहा, सब गा ही रहे, इतने आनंद में केवल गा ही रहे। कुछ लोगों को गाने से परेशानी होती है हमारे पड़ोसी जी आपको, लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल गाना ही है, बोलना ही नहीं, गाते ही जाना है, गाते ही जाना, इतने आनंद में है, नाचते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो ग्वाल जो अन्य ग्वाले हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है, वो भी बड़े आनंद में जो है भगवान कृष्ण बलराम का नृत्य देख रहे हैं। इतना आनंद तो द्वारका में भी नहीं, द्वारका में भी ऐसे नाचते नहीं भगवान। ये स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। उसका प्रभुपाद कह रहे हैं, तो समझ रहे हैं उद्देश्य क्या है, धर्म, धर्म ऐसा पर धर्म का पारण करे, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के धाम जाकर हमेशा हमेशा के लिए असीमित सुख की प्राप्ति हो जाए, यह है उद्देश्य धर्म का। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। इसका मतलब क्या है, देखिए ये श्लोक है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः स पंथा। ये बात यमराज जी ने, ये श्लोक नहीं, ये श्लोक है युधिष्ठिर महाराज का, और यमराज जी ने ये बात बोली है छठे स्कंद में कि जो भागवत धर्म है, भक्ति है, इसके रहस्य को हर कोई नहीं जानता है, क्योंकि यमदूत हैं, उनके मन में प्रश्न आ सकता है, अरे भाई भगवान की पूजा करने मात्र से, ये नाम उच्चारण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये सारे प्रायश्चित काहे को बताए गए, इतने सारे जो याज्ञवल्क्य इत्यादि लोगों ने बताया ये करो, ये पाप पर प्रायश्चित करो, वो प्रायश्चित करो, क्या जरूरत है। तो कहते हैं कि देखिए प्रायणा, प्राय ये लोग जो है इनकी जड़ीकृत मति हो गई है, इनकी जो मति है वो जड़ हो गई है, वो भगवान के धर्म को, भगवत धर्म को, भक्ति की महिमा को समझ नहीं पाते, इसलिए इन्हें अलग अलग बातें बताई हैं और लोग भी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवत धर्म को जानता है तो ये 12 लोग हैं, ब्रह्मा जी स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी स्वयंभू, नारद शंभू, कुमार कपिलो मनु, वयम करके श्लोकार है, मतलब ब्रह्मा जी हैं, मनु महाराज, यमराज जी, भीष्म पितामह, नारद जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज, ऐसे करके 12 लोग हैं जो भगवान के तत्व को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, भगवत धर्म की महिमा जानते हैं, और उनके जो अनुगत्य हैं वह भगवान के धर्म को जानते हैं, भगवान की भक्ति को जानते हैं, उसकी महिमा को जानते हैं, इसलिए वह भगवान की भक्ति ही करते हैं। भगवान के सेवा करके ही जीव का परम कल्याण होगा, इसको महान भक्त जानते हैं, ये बात समझ में आई, इस कारण से वह भगवान की भक्ति ही करते हैं। और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वो भले शुरुआत में न जाने, लेकिन हमने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है, अन्य भक्तों ने भगवान को चुना है तो भगवान की ही सेवा करना चाहिए। और ये भागवत में बार बार सिद्धांत स्थापित किया जाएगा। जैसे आप जानते हो, जब स्वयं अमृत महोत्सव हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी आई थी, तो लक्ष्मी जी ने किससे शादी करी थी? भगवान विष्णु से। और उन्होंने भी फॉल्ट फाइंडिंग करी थी, शिव जी में ये दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, इसमें ज्ञान है तो इंद्र संयम नहीं है, किसी की उम्र लंबी नहीं है, कोई असुर है, ऐसा करके। तो सबनों को रिजेक्ट करके उन्होंने भगवान विष्णु को चुना था। भगवान विष्णु में क्या दोष देखा था? ये हमको चाहते नहीं। शायद ये पत्नियों की प्रॉब्लम रहती है कि सोचते हैं कि पति नहीं चाहते उनको। पता नहीं, ये कमेंट करने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मी जी की ये थी। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की सेवा करें, बहुत स्नेह करते हैं भगवान। सही में भगवान अपने भक्तों से स्नेह करते ही हैं, अपने भक्तों के भक्त कोई हो जाता, भक्तों की सेवा करता उससे भी बहुत स्नेह करते हैं। ये स्वयं महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास तुम्हारे गांव का कोई कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है, तुम्हारा सेवक कोई सेवकों का सेवक करोड़ों गुना सेवकों का सेवक होगा, वह भी मुझे प्राण से अधिक प्रिय है। एकदम स्पष्ट चतन भागवत में लिखा गया। तो ये सब भगवान के गुण हैं, तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्या हम श्लोक से सीख रहे हैं? पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान की पूजा करी परम कल्याण के लिए, और परम कल्याण का मतलब था भौतिक गुणों से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाए व्यक्ति। उसी प्रकार से उनका अनुसरण करते हुए सबने पूजा करी। मैं कुछ और टीकाओं से भी कुछ बोलूंगा, ठीक है। श्री स्वामी यही बात बोलते हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि विशुद्ध सत्व का शरीर होने का मतलब है उनका जो दिव्य विग्रह है वह चित शक्ति से, चित शक्ति का प्रकाशमान है। जो उनका भगवान का स्वरूप है वो भौतिक वस्तुओं से नहीं बना है, रजगुण तमगुण सत्वगुण के विकार नहीं है। और उसको वो कहते हैं, श्रुति संबंध में कहती है, विद्या विद्या भिन्नम, विद्या शक्ति भी माया की शक्ति है और अविद्या शक्ति भी माया की शक्ति, तो उससे परे है भगवान। भगवान कोई इसको सब चीज स्पर्श नहीं कर सकती है। तो जो भगवान की पूजा करता है वह भी मुक्ति के लिए इस जगत में, मैं जल्दी से बोल दे रहा हूं, जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है वह भी मुक्ति इस जगत में, इस जगत में वह मुक्त होने के योग्य बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भाई अच्छा प्रसादम होता है तो हम उसको आस्वादन करने के लिए प्रसाद खाते ना, ये तो सोचते नहीं अरे भूख कब मिटेगी, अरे भूख कब मिटेगी, कोई सोचता है ऐसा? ये तो नहीं है ना। हलवा आता है तो भूख नहीं भी होगी तो आदमी खाता है बढ़िया से, तो वो हलवे का आस्वादन करता है। वो ये नहीं पूछते आपने भी गाजर का हलवा खाया था, विटामिन सोच रहे कितने विटामिन है इसमें, इससे मिलने से क्या शरीर में पुष्टि होगी, कोई नहीं सोचता है सब बात। तो वस्तुतः भगवान की सेवा करने वाले को इतना सुख मिलता है, वो मुक्ति के बारे में सोचते नहीं, मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। मुक्ति के लिए भगवान के लिए पूजा करना भी कोई बुद्धिमानी नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई इस संबंध में प्रश्न है यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब बहुत सुंदर बात अगले श्लोक में आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ठीक है, जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो कर रहे हैं, उनका अन्य देव उपासकों के प्रति क्या मनोभावना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भक्तों को भले ही भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई शिवजी की पूजा कर रहा है या दुर्गा जी की पूजा कर रहा है या और किसी घोर रूप की पूजा कर रहा है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और ये श्लोक थोड़ा समझने वाला होगा, हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नतः नारायण कलह शांता भजन्ति हि अनसूयवः। मुमुक्षवः, जो लोग मुमुक्षु हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, वे हित्वा घोर रूपान, वह भूतपति देवताओं इत्यादि के घोर रूपों को छोड़ देते हैं। जैसे आप लोग जानते हो काल भैरव, प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं काल भैरव, इसमें समझाएंगे एक जगह। काल भैरव आपने सुना होगा, बहुत लोग पूजा करते हैं, इसमें बकरे की बलि वगैरह दी जाती है। झांसी में हमने देखा था, एक स्थान था वहां पे किसी विशेष दिन में शराब और ये सब बकरा वगैरह काटा जाता है इस प्रकार से। तो वो देवताओं के कुछ घोर रूप हैं, उनकी लोग पूजा करते हैं, तो उन घोर रूपों को हित्वा वह छोड़ देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं नारायण कलह शांत। कला का अर्थ होता है स्वअंश, स्वअंश का अर्थ होता है भगवान के वह विस्तार जो भगवान के समान ही शक्तिशाली होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण, उनके कला या स्वांश हैं कौन, बलराम जी, और फिर बलराम जी से फिर चार विष्णु तत्व विस्तारित होते हैं। ऐसे करके जितने भी विष्णु तत्व हैं उनको स्वांश कहा जाता है, जो भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं और वह भी भगवान हैं। तो या तो भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की, बलराम जी की, संकर्षण की, विष्णु के किसी रूप की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के पूजा करते हैं जो शांत हैं, जो प्रभुपाद ने उसको अनुवाद की है परम आनंदमय, सुखमय है, उन्हें कोई भौतिक गुण विकार प्रभावित नहीं करता, उनकी पूजा करते हैं। भजंती का मतलब होता है उनका भजन करते हैं। अनुसूय भा द्वेष रहित, मतलब अब कोई अन्य देवता की पूजा करे तो करे, उससे उन्हें कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो द्वेष नहीं करते, लेकिन वह भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वह प्रचार नहीं करते। मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग अन्य देवताओं की पूजा किया करते रहेंगे, लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको बताया जाता है, लेकिन जो लोग अब नहीं समझना चाहते उनसे द्वेष नहीं करते, उनको ये नहीं कहते कि अरे यार ये तो फालतू लोग हैं, कहाँ इनकी पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, यह भक्त का भावना नहीं होती। ये बहुत समझ में पड़ता, सबका सम्मान करना, लेकिन इसको किस तरह से समझ रही हैं ये मुझे नहीं पता। देखिए बहुत बार जब लोग कहते हैं सबका सम्मान करना चाहिए, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि देवता भगवान के बराबर है। ये देवताओं का और भगवान का दोनों का ही असम्मान है। ये बात समझ रहे हैं आप, शिव जी को भगवान के बराबर रखेंगे तो शिव जी कभी कभी खुश नहीं होंगे, वो वैष्णव हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, वैष्णव के रूप में उनका आदर करना चाहिए। अब कोई कहे कि इंद्र जो है भगवान कृष्ण के समान है, तो वो इंद्र का अपमान है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त यहां पे आए, मैं बोलूं अरे भाई आ गए भारत के प्रधानमंत्री, आइए बिठाइए उनको स्थान दीजिए, तो समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति का मैं मजाक बना रहा हूं। नहीं, मान लीजिए कोई माता जी आए, बोले आ गई इंदिरा गांधी तो आप कहें, अब मेरे बोल देने से पहली बात तो इंदिरा गांधी हो नहीं जाएंगी, और वो समझ स्पष्ट समझ जाएगा कि वो बुरा लगे, मैं इंदिरा गांधी नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देवता लोग प्रसन्न नहीं होते अगर उनका भगवान बोल दीजिए, भगवान के दास हैं, ठीक है। तो द्वेष रहित होने का अर्थ है कि वह उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझना चाहता है तो उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, अपना जो करना चाहे वो करें। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित रहते हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, हमने पहले भी पढ़ लिया था, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत किसको अच्छी लगती है, जो निर्मत्सर हैं। तो निर्मत्सर शब्द का अर्थ था, मत्सरता का अर्थ था पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे का उत्कर्ष को सहन नहीं करना। तो मत्सरता और ईर्ष्या में क्या अंतर है, देखिए मान लीजिए कि मैं और दूसरा व्यक्ति एक बराबर हैं, तो अगर वह आगे बढ़ता है तो मुझे ईर्ष्या होती है, और मत्सरता मतलब किसी में कोई भी उत्कर्ष हो मुझे खराब लगे। फिर से रिपीट करूंगा, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, बहुत हल्का सा खिचड़ी विचड़ी थोड़ा बना लेते हैं। अब यहां पे माता जी लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो अब अगर मैं द्वेषी होऊंगा तो भले ही मुझे खाना बनाना ना आता हो, लेकिन मुझे जलन होगी इन्हें खाना बनाना क्यों आता है। ना 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 ना, ना, ना। अच्छा अब अगर दो माता जी हैं, दोनों को खाना अच्छा बनाना आता है, और एक अच्छा बना रही है और दूसरे को जलन हो रही है, तो वह ईर्ष्या है, क्योंकि दोनों समान क्षेत्र में हैं और वो एक का उत्कर्ष हो रहा है तो उसको ईर्ष्या कहा जाएगा। लेकिन मत्सरता मतलब कोई कैसे भी आगे बढ़ रहा है मुझे जलन होगी, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, चाहे वो उस विषय में मेरा कोई मतलब हो या ना। जैसे कि रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति थे, उन्हें हरि नाम से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, उनका उत्थान हो रहा है, तो उसे जलन हो रही थी, उसे कोई मतलब नहीं हरि नाम करना, उसे अरे तुम भी प्रीचिंग करो, कौन रोक रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाता है, तो गाने वाला देखा सामने वाला और अच्छा गा रहा है तो उसको ईर्ष्या होगी, लेकिन कोई गाता ही नहीं, मान लो उसको स्वर का कोई ज्ञान ही नहीं है और उसको दिक्कत हो सामने वाला अच्छा गा रहा है, तो यह मत्सरता कहलाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये कह रहे हैं भक्त लोग द्वेष से रहित हैं, इस जगत में कोई बहुत महान बन रहा है, खूब पैसे कमा रहा है, भक्तों को कोई उससे मतलब नहीं है। कारण पता है, कोई बता सकता है कि भक्त लोग द्वेष से रहित क्यों हो जाते हैं? क्या कहने, एक एक करके उनकी उस जगत में आसक्ति कम हो जाती है, ठीक, और भगवान संग लगन जुड़ जाती है, भगवान के परम धाम जाना, ये सारे सही उत्तर हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जगत में भगवान की भक्ति से इतना सुख प्राप्त होता है कि वो क्या है कि नहीं भाई, है सोचते रहे ना। मान लीजिए अभी आप थोड़ी देर पहले अभी बढ़िया से गाजर का हलवा खा रहे थे, अब वो बगल में कोई सूखे चावल खा रहा हो तो आपको लगेगा अरे यार सूखे चावल क्यों खा रहा है। कुछ नहीं, आप इतने आनंद में है, अब क्या खा रहे हो सूखे चावल, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो ये स्थिति है और इसके लिए लोग चिढ़ते हैं। मैं इससे पहले इस थोड़ी सी घटना बताऊंगा, सच्ची घटना। एक महाराज जी थे, महाराज जी हैं, इनका नाम है, नाम भूल गया मैं, एन से नाम है उनका, निरंजन महाराज। तो निरंजन महाराज हवाई जहाज में जा रहे थे, अपनी घटना बता रहे थे। कह रहे व्यक्ति बगल में बैठ गया, बातचीत करने लगा, और विदेशी लोग अपने बारे में किसी कुछ नहीं बताते, हम भारतीय लोग तो एक्सपर्ट होते हैं, आप कहाँ के हैं, मैं यहाँ का हूँ, आप कहाँ के हैं, तो हम तुरंत बात चालू कर देते। और विदेशी लोगों को पूछेंगे ना आप क्या करते हो, क्या है घर में, तो गुस्सा हो जाएंगे, आप कैसे बोल सकते, पूछ सकते, क्यों पूछ रहे हैं आप। तो उसने अपने आप ही महाराज को बताना चालू कर दिया, मेरे घर में ऐसा है, मेरा डिवोर्स हो गया, मैं ये हूँ, मेरा परेशान हूँ, ये वो। बाद में वो कहा कि महाराज सुन रहे थे, क्या बगल बैठे सुन रहे, बोले मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे क्या पता आप क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम सुखी हो, क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, कहते नहीं, कहते तुमने तुम्हारी पत्नी, कहते नहीं मैं तो सन्यासी हूँ, मतलब शादी कभी किया नहीं, तो बच्चे हैं, तो बच्चे को होने का मतलब ही नहीं है, अरे शादी नहीं किया, बैंक बैलेंस नहीं, घर नहीं, शादी मतलब पत्नी नहीं, कुछ नहीं, अब सुखी कैसे हैं। तो बहुत से लोग इस प्रकार से जो है वह द्वेष करते हैं भक्तों से, भक्त लोग सुखी क्यों है। ऐसे प्रभुपाद जी एक जगह मंदिर सॉरी नदी से था, वहां भक्तों का कैंप था, जहां कीर्तन हो रहा था, प्रसाद बन रहा था, और एक भक्त एक व्यक्ति नदी में तैरता हुआ आया, तैरता हुआ नहीं सॉरी बोट पे आया, और गाली देने लगा, तुम लोग कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, ये हरे कृष्ण करते रहते, ये वो। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी से रिपोर्ट किया, प्रभुपाद जी ये कह रहा है कुछ नहीं करते हम लोग, और हम तो हरे कृष्ण करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा टेल हिम कम एंड ज्वाइन, आप भी हमारे साथ आ जाइए और आप करिए, लेकिन लोगों को ये हजम नहीं होगा, खुद हरे कृष्णा नहीं कर सकते, और भक्तों के दुख सुख को देख करके वह जलते रहे। अब देख लेना भक्त किसी से लड़ाई नहीं करते, लेकिन केवल देख देख के लोग जलते रहते, ये लोग सुखी क्यों हैं। अभी एक और मैं घटना को बताऊं, कुछ गृहस्थ भक्त आए थे गांव से, तो पार्थ कृष्ण प्रभु ने जानबूझ करके उनको ब्रह्मचारियों संग बैठ के खिला दिया, और वो देख रहे थे खिचड़ी दाल चावल स्वीट हलवा पकौड़ा ये वो, आप लोग तो बड़े आनंद है। उन्होंने कहा और एक भी आइटम बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन रोज सुबह मंगल आरती जाना है और जप करना है, भक्ति करना है, ये चीज है। तो खैर कहने की बात यह है प्रभु की हम भक्त लोग द्वेष रहित रहते हैं, उन अपने भक्ति करके सुखी हो जाते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी देवताओं के घोर रूप को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो समझ में आ गया आपको, या तो भगवान कृष्ण की या बलराम या विष्णु, ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति द्वेष भाव कभी नहीं रखना चाहिए। भाई ठीक है किसी का हमारे भगवान के कृष्ण के प्रति आ सकती है, कोई व्यक्ति विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बस ये ध्यान देना अगर वो आपसे सुनते हैं कि वे प्रामाणिक तरीके से करें, यहां एक मिस्टेक हो जाती है, भले भगवान विष्णु की पूजा भी कर रहे हैं लेकिन प्रामाणिक संप्रदाय में तरीके से जब भक्ति करना चाहिए, तभी मनमाने तरीके से ठीक से यशोती मतलब पुराणों के आधार पर ना करे हुए भक्ति, तो फिर भगवान विष्णु की भक्ति भी कर रहा हो लेकिन उसको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा, वो गड़बड़ ही होगा। जैसे बहुत से लोग अपने आप को राधा कह देते हैं, ये सब नहीं होता, ये सब चलता नहीं कि मैं राधा हूँ, मैं गोपी हूँ, ऐसा कोई बोलता है, ऐसा सब फालतू बात है, ये शास्त्र अनुमोदित नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि सबका सम्मान करते हैं लेकिन वह, और देवताओं के जो घोर रूप हैं काल भैरव सब रजोगुण तमोगुण वाले, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते। सम्मान करने का अर्थ ये नहीं कि अपनी बुद्धि को क्या कहते हैं उसको, बुद्धि को अलमारी में रख के दे, बुद्धि रहती है, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, ये नहीं कि अब क्या कहते हैं उसको, गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। शिव जी के मंदिर में जाएं, जरूर जाएं, प्रणाम कीजिए, बोलिए वंशा कल्पतरु भेश्च, आप वैष्णव हो, हमारी जैसे आपकी भगवान राम के नाम में आ सकती है, कृष्ण नाम में आ सकती है, हमें थोड़ा सा नाम में रुचि दीजिए। दुर्गा जी के पास मंदिर में जाएं, जरूर जाएं, उनको प्रणाम करें, वैष्णो देवी हैं, वैष्णवी हैं, इस्कॉन डिवोटी हैं। आपको पता है इस्कॉन डिवोटी हैं किसकी चेली हैं? वो हरिदास ठाकुर जी की चेली हैं। वो हरे कृष्ण मंत्र उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से लिया हुआ है, तो इस्कॉन डिवोटी हैं। अब इस्कॉन डिवोटी घर जाएंगे तो उनको प्रणाम करने जाते हैं कि नहीं? मिलते ही उनसे। तो यह अगर हमने भावना रखी कि देवता जो है भगवान से अलग हैं, उनका असम्मान किया तो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान की युक्ति है, लेकिन उनको भगवान नहीं मानना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? हाँ, पिता, यस, आप कहो भाई पिता, अब बेटे को या आपके बड़े भाई को पिता तो नहीं कह सकते ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने बड़े भाई का सम्मान करें। किसका सम्मान क्या करना है, किस दृष्टि से करना है, समझना चाहिए। जैसे आप बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक लड़की की जब शादी होती है तो देवर का भी सम्मान करती है, और कौन कौन से संबंध होते हैं, जेठ का भी सम्मान करती है। किसका संबंध देख करके? पति का संबंध देख कर, समझ रहे ना, सबका यथा योग्य यथा यथ सम्मान करना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूं, मैं खाली उसके पॉइंट्स को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, भगवान कृष्ण उनके दो प्रकार के अंश हो गए स्व अंश और हो गए भिन्न अंश। स्व अंश होते हैं विष्णु तत्व, मैंने अभी समझा दिया था ना, विष्णु तत्व, बलराम जी, जितने भी भगवान विष्णु के अवतार, वो सब हो गए स्व अंश, मतलब सीधे उन्हीं के अंश, और वह उन्हीं के समान शक्तिशाली होते हैं। जैसे दीपार चिरे भी दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते ही विवृत हेतु समान धर्मा विष्णु च सदृग च तया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बजामी। एक कैंडल, उससे बहुत सारी कैंडल जलाएं, लेकिन सारी कैंडल मोमबत्तियां एक ही प्रकार से लाइट दे रही हैं, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल कैंडल है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अनेक विष्णु रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, लेकिन वो सारे विष्णु तत्व जो है वो भगवान कृष्ण के समान शक्तिशाली, इन्हें क्या कहते हैं? स्व अंश, स्व अंश। भिन्नांश क्या है? जितने भी जीव हैं वह भगवान के भिन्न अंश कहलाते हैं, वह सेवक हैं, वह भगवान के बराबर नहीं है, वह अणु हैं, लेकिन जो स्व अंश है वह विभु हैं, वह अनंत हैं। इतनी फिलॉसफी आप डाइजेस्ट नहीं, भगवान के बराबर नहीं है, भिन्न जो स्व अंश है वह भगवान के बराबर है, वो भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, ये सब भगवान है। एक क्विज है छोटा सा, तो भगवान को अपने आप को विस्तार करने की जरूरत क्या थी? आज माइक भी नहीं चल रहा है तो हम कैसे बोला जाए, लेकिन हाँ, भगवान कृष्ण को अपने आप को अलग अलग रूप में विस्तार करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि शाश्वत रूप से अलग अलग जीव भगवान से विभिन्न रूप में रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है भगवान विष्णु राम या कृष्ण में, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है। हमने कई बार समझा दिया, इसे समझाने की आवश्यकता मैं समझता हूं नहीं है। ओके, बोलिए। स्व अंश भगवान है, यस। दुर्गा देवी, शिव जी, यह भगवान के स्व अंश नहीं है। दुर्गा देवी भगवान की छाया शक्ति है, मायेव छायेव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा। भगवान की छाया शक्ति है, जैसे कि आप देख सकते हो छाया कैसे चलती है, जैसे आपका हाथ चलेगा, उसी प्रकार से भगवान की इच्छा से माया देवी, दुर्गा देवी इस जगत की सृष्टि करती हैं। तो भगवान की यह शक्ति है, छाया शक्ति। शिव जी की स्थिति जो है आप जानते ही हो, यह है बीच की स्थिति है। अब बीच की स्थिति कहिए क्या कहिए, लेकिन वो अलग तत्व ही है, वो ना भगवान है और ना भगवान नहीं है। ये क्या मतलब है? जैसे आप जानते हो दूध से दही आता है, तो अब दही को दूध कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि दही दूध नहीं है। समझ में बस इसी समझ में आता है ना, शीरम दधि विकार विशेष योग्या। तो जब भगवान विष्णु भौतिक शक्ति को संपर्क करते हैं उसको शिव तत्व कहते हैं, लेकिन वह जीव नहीं है। तो ये बातें हम समझा चुके हैं, आप जानते हो। तो इसलिए प्रभुपाद इसके बाद बोलते हैं कि जो जीव हैं वह सीमित शक्ति वाले होते हैं। हम जितने भी जीव हैं हमारी शक्ति सीमित है, और भगवान विष्णु नारायण जितने भी इनके रूप हैं उनकी असीमित शक्ति होती है। तो बड़ा स्पष्ट है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति विष्णु तत्वों को जीव के समान मानता है तो ये बहुत बड़ा अपराध करता है। यह अपराध से व्यक्ति को बचना चाहिए। प्रायः इस प्रकार का अपराध भारत में जरूर चलता है, इसलिए प्रभुपाद जी इसको जरूर तात्पर्य में रखें। आप लोग बहुत सारे लोगों से मिले होंगे ना जो कहेंगे कि शिव जी भी हैं, भगवान तो ये भी हैं। मैं कल भक्तों से चर्चा कर रहा था, मेरी भांजी कह सकते हैं, मेरी बहन की लड़की, तो उसने अपनी नानी मेरी माँ से सुन लिया, तो उसको किसी ने फोन किया, तो उसने कहा कि विष्णु भगवान है, मेरी भांजी ने कहा कि विष्णु भगवान है, तो उसने कहा नहीं शिव जी भी भगवान है, तो कहता नहीं 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 नहीं, जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे देवताओं को पूजा, सारे शाखों को मिल जाता है, ऐसे भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे देवताओं को मिल जाता है। तो मैंने कहा वो लड़की क्या बोल रही है पता नहीं, लेकिन ये लड़की तो भागवत बोल रही है, नारद जी की उक्ति बोल रही है, क्योंकि उसने प्रमाणिक रूप से सुना है। अब नानी क्यों सही बोल रही है, क्योंकि नानी ने भागवत से सुना है। दिक्कत ये हो गई कि हमारी नानियों ने भागवत से नहीं सुना इसलिए हम नहीं बोल पाते। तो आप लोगों को नई परंपरा चालू करने से, भगवान ने बोला था ना कि भाई ये इस काल के कारण ये परंपरा छूट गई है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, इसलिए हमें नई नानियां और मामियां और मौसियां क्रिएट करनी है, उस तरह मौसा नाना दादा क्रिएट करने हैं जिनको भगवान के बारे में पता हो। कभी आपके बच्चे लोग ऐसा प्रश्न किए हैं कि ये जगत की सृष्टि का कारण क्या है, कभी कोई प्रश्न करता है? कभी कभी कुछ बच्चे लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों बनाया भगवान ने, कौन भगवान है, तो उसका उत्तर देने के लिए हमें योग्य होना चाहिए। हाँ, कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं तो हमें बताने के लिए योग्य होना चाहिए। हाँ, तो हम इसको ऐसे समझिए, महाराज जी कई बार तो बहुत कुठाराघात करते हैं कि जगत में हम किसी गुरु को भगवान कह लेते हैं, और पता चला का गुरु जी ही डेंटिस्ट के पास गए हैं, भगवान को क्यों गए हैं, आज भगवान मिलने कोई आया उनको तथाकथित भगवान से, बोले क्या हो गया भगवान कहाँ है, तो बोले भगवान ने भी दांत में दर्द हो रहा था भगवान के, तो डेंटिस्ट के पास है, तो ये कैसे भगवान है जो वृद्ध हो रहे हैं, जो इनके दांत गिर रहे हैं। तो आंख मूंद करके किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए, ये बात बहुत बार प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि भगवान कौन है इसको समझना चाहिए। असीमित शक्ति केवल विष्णु नारायण भगवान विष्णु में, कृष्ण में ही है, और किसी में नहीं है, किसी देवता में नहीं है। अभी तो नारद जी कहते हैं 11वें स्कंद में देवता कर्म सचिव, सचिव समझते हैं आप लोग, सचिव सेक्रेटरी, आपके कर्म के सचिव हैं, इसका मतलब जो आपके कर्म हैं उसके अनुसार वो देते हैं, उससे 1% अधिक नहीं दे सकते। लेकिन भगवान जो दे सकते हैं वह भगवान कृपा करते हैं, वो तुम्हारे हमारे कर्मों के अनुसार नहीं देते, अपितु कर्मों को भी अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। ये बात समझ में आ रही है, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं देते और हमारे कर्मों को भी अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। ये बहुत टफ है बात समझना, हमारे जीवन में जो स्पेशली भक्ति कर रहे हैं जो वस्तुएं हमारे भगवान के पास लेके आएंगी वो भगवान देंगे, वो चाहे सुख हो चाहे वो दुख हो, ठीक, और जो भक्त जो वस्तुएं भगवान से दूर लेके जाएंगी वो भगवान नहीं देंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अगर धन आना हो और उससे भगवान से आप दूर हो जाओगे तो भगवान नहीं देंगे। अरे ऐसा भी था, पहले क्यों नहीं बताया आपने, अभी तो बहुत लेट हो गया, अब तो आपने हरे कृष्णा कर दिया, अब तो फंस गए भगवान के चंगुल में। और अगर कुछ दुख देना होगा तो वो दुख भी देंगे, दुख मतलब मार के पीट करके जैसे भी करके वो भक्ति नहीं छोड़ने देंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग भगवान की ही पूजा करें। भगवान बहुत कृतज्ञ है, हद से ज्यादा कृतज्ञ है, हद से ज्यादा एक्सट्रीमली कृतज्ञ, कुछ भी सेवा करते हैं, सेवाम मनागपि कृता बहुमान यंति, भगवान के भक्त बड़े बड़े गुरु अपराध, बड़े बड़े अपराध करते भगवान उसे कुछ नहीं गिनते, और थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो उसको बहुत मानते हैं। कोई व्यक्ति भगवान को गाली देता है, उनका शत्रु भी बनता है, तो भगवान उसे शत्रुता नहीं करते। शीले न निर्मलिमति, ऐसे भगवान की निर्मलमति वाला शील है, शील स्वभाव है भगवान कृष्ण का। तो उनका हमें जब गुण सुनते हैं तो उन तब मन में आता है कि हम इन्हीं की सेवा करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, इस प्रकार से, या फिर ये इस प्रकार की जो पूजा लोग करते हैं वह तमोगुण के स्तर में होते हैं। आप जानते हो कुछ लोग जो शमशान में जाकर के वो रात्रि में 12 बजे वो साधना करते हैं, तो उसमें कोई दिव्य गुण नहीं होता, वो सब तमोगुण होता है। और उससे श्रेष्ठ कुछ अगर रजोगुण में है तो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है वह भगवान की उपासना करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं थोड़ा इसमें और प्रवेश करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति किसी की उपासना करने में एकदम लगा हुआ है, उसका कारण क्या है जानते हैं? उसके हाँ, उसकी श्रद्धा, और वह श्रद्धा का कारण क्या है? नहीं 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 नहीं, मेरा प्रश्न समझिए। कोई व्यक्ति, भगवान की छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की देवता की, चंडिका की या शमशान भैरव या कुछ भी, गणेश जी की पूजा कर रहा है, तो बिल्कुल सही प्रभु जी ने बोला कि श्रद्धा के कारण कर रहा है। और उस श्रद्धा का कारण क्या है? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, सत्व जो उसका चित्त है वह गुणों से प्रभावित है, रजगुण तमगुण सत्वगुण के मिश्रण से प्रभावित है, और उसके अनुसार उसकी श्रद्धा हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरा कल्याण करेगा, और उसके कल्याण का कंसेप्शन कि ये प्राप्त होने से मेरा कल्याण हो जाएगा, यह भी उसकी श्रद्धा के अनुसार होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी प्राप्त कर लूंगा तो मेरा परम कल्याण हो जाएगा, कोई सोचेगा कि मेरे स्त्री प्राप्त हो जाएगी तो मेरा परम कल्याण हो जाएगा। और इसी को भागवत में बोला गया है कि कोई संतान चाहता है तो इसकी पूजा करे, कोई पत्नी चाहता है तो इसकी पूजा करे, कोई ये इसकी विभिन्न प्रकार से। तो यह है लोगों के विभिन्न प्रकार के हृदय को, हृदय अर्थात हार्ट नहीं, हृदय अर्थात मतलब चित्त, चेतना, उसको दर्शाता है। और जो समझ रहा है कि भगवान कृष्ण की विष्णु की उपासना करने से मैं परम कल्याण को प्राप्त होऊंगा, उसका चित्त शुद्ध हुआ है। यह इसका लक्षण क्या है? भगवान विष्णु की पूजा करने से मेरा परम कल्याण हो गया है, ये समझ में आ रहा है, यही उसके चित्त के साफ होने का प्रमाण है। नहीं समझ में आया? अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हरे कृष्णा करने से आप लोग भगवान के धाम चले जाओगे? भरतपुर में सबको समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ में नहीं आ रहा है हरे कृष्ण करना? नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं कि हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान की पूजा करूंगा तो मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भगवान की महिमा समझ में आ रही है, यह कोई आसान बात नहीं है। यह इसीलिए आ रही है क्योंकि हृदय शुद्ध हुआ है भक्ति करके। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, हृदय शुद्ध होगा, उतनी श्रद्धा और बढ़ती जाएगी, वही जगत में कुछ नहीं रखा है, भगवान की पूजा ही करना है मुझे, ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए, जगत में कुछ रखा नहीं है, हमें लग रहा है कुछ रखा है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारा हृदय अशुद्ध है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करके या कुछ धन प्राप्त करके या कुछ और प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसको भगवान की भक्ति करने का महिमा समझ में आ गई है, ये बातें मैं बोली। उसके हृदय में कुछ सत्वगुण है, कुछ शुद्ध है हृदय, तब वो समझ पा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी की किस प्रकार से वो पूजा करते हैं। तो ब्राह्मणों के घर में शालिग्राम रहता है, वो भगवान की पूजा करते हैं, अन्य लोग भी पूजा करते हैं भगवान की। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वह क्यों द्वेष नहीं करते, क्यों द्वेष नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जितने भी देवता हैं ये भगवान के ही भिन्न अंश हैं, और ये लोग जो पूजा कर रहे हैं इनका हृदय अशुद्ध है, इसलिए समझ नहीं पा रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों द्वेष नहीं करता? देखिए, अच्छा पहले देख लीजिए कि द्वेष कैसे करते हैं लोग। मुसलमान लोग हिंदुओं से द्वेष करते हैं कि नहीं करते? और जबकि अल्लाह और कृष्ण एक ही बात है, अल्लाह और कृष्ण एक ही बात है, लेकिन द्वेष करते हैं। कुछ हिंदू लोग जो है मुसलमानों से द्वेष करते हैं, इनको मार के हम सुखी हो जाएंगे, या क्रिश्चियन लोग और द्वेष करते हैं। तो मूल बात क्या है कि चलो तुम भगवान के प्रेम अपनी भक्ति करो, तुम दूसरे से द्वेष क्यों करो, मारने का क्यों विचार बाद में आ रहा है? तो अपना वो नहीं, उनका कॉम्पिटिशन की भावना रहती है। तो ये अहंकार या ये जो कॉम्पिटिशन की भावना है, हमारे चेले बनने चाहिए या ये लोग गलत हैं, ये नहीं। भक्त समझ रहा है कि इनका चित्त इनको प्रेरित कर रहा है उस देवता की पूजा करने के लिए। अब ये अगर हरे कृष्णा कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं कर सकते तो ठीक है, वो भी चलेगा। इसका अर्थ ही नहीं कि भक्त प्रीचिंग नहीं करते, लेकिन प्रीचिंग किसको करनी चाहिए? जो प्रचारित होना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो नहीं सुनना चाहते उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये बात बोल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि देवता की उपासना करके कोई स्वर्ग आदि प्राप्त करते रहो, भाई कोई दिक्कत ही नहीं। एक उदाहरण मैं दूंगा अपने जीवन से। मैं साउथ इंडिया में कॉलेज में था, तो हम बीटेक फर्स्ट ईयर में थे, फिर आईटी की तैयारी करने के लिए, तो आईटी का सिलेक्शन हो गया हमारा। तो तुरंत ही उस कॉलेज के कंपटीशन से मैं अलग हो गया। अब इस एग्जाम में, वहां के जो इंटरनल एग्जाम में किसके कितने नंबर आ रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन तो अलग हो गया। नहीं समझ में आ रहा? तो उसी प्रकार से भक्त लोग देख रहे हैं, ये जीवन में मैं बहुत पैसा कमाया नहीं कमाया, जो भगवान की कृपा से कंबल चादर वगैरह सब कुछ आ ही रहा है, बढ़िया प्रसाद भी खाने को मिल रहा है, हरि नाम करने को मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रहा है, और भगवान का धाम भी दिख रहा है, तो बस फिर क्यों हम किसी से द्वेष करें? बहुत अच्छी भावना है एक्चुअली। अगर सारे लोग कहें ना, सारे लोग भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर वहां के भक्त बन गए तो कोई झगड़ा नहीं होगा। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि जैसे पहले लगता कि उसका प्रमोशन हो गया, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये टेंशन। अभी कुछ नहीं, बस केवल हम भक्ति में कैसे प्रमोट हो जाए, कैसे भक्ति में प्रमोट हो जाए, कब भक्त को हमें हरि नाम का सुख प्राप्त होगा, भागवत का सुख प्राप्त होगा, यही इच्छा चलती रहती है। स्वाभाविक रूप से हम लोग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, इस जगत में अगर हमारे पास कुछ है और हम उसको शेयर करते हैं, शेयर मतलब बांटते हैं, तो आप द्वेष से मुक्त होते हो। ये भक्तों का स्वभाव ही होता है, भक्त का स्वभाव ही होता है कि जिसके पास कुछ अगर सोर्स है, रिसोर्स है, मतलब कुछ संपदा है, वह दूसरों से देना चाहता है। उसको यहां इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, मतलब इकट्ठा करो, अपने लिए इकट्ठा करो, चाहे खा ना पाओ लेकिन इकट्ठा करो जो वृत्ति है, उस प्रकार की भक्ति की वृत्ति नहीं होती। स्वाभाविक रूप से भक्ति करने से आ जाती है, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब प्रभुपाद बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस जगत में लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कभी कभी वह देवताओं की उपासना करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की उपासना करी। और आप में से कितने लोग जानते हैं कि उसने पहला वरदान क्या मांगा था, कि मैं अमर हो जाऊं, और उसका ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया, बेटा मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको अमर कहां से बनाऊंगा। तो फिर उसने अपने ही इष्ट से घुमा फिरा के बात करी कि मैं बाहर नहीं अंदर नहीं, ये वो सारे लॉयर रहा होगा लगता है भारत का, वो सारे इसने सारे सारे स्टेटमेंट ले लिए कि कोई कोई गलती ना हो जाए, कहीं छूट ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं, किस तरह से भगवान उससे बड़े लॉयर थे, उन्हें सारा कुछ घुमा करके उसे मार दिया, लेकिन वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका। और प्रहलाद महाराज बिना मुक्ति की कामना किए ही मुक्त हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखिए, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मुक्ति उसमें अंदर अपने आप ही रहती है। ये बात समझ में आ रही है? भगवान की सेवा करने, अब मान लीजिए भगवान की आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं कब मुक्त होंगी, मुक्त हो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ कुछ भी कर रहे हैं, आप मुक्त अवस्था में। इहा यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। इस जगत में किसी तरह से भी व्यक्ति मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा करना तो छोड़िए, सेवा करने की इच्छा कर रहा है तो वह जीवन मुक्त है। इस जगत में रहते जीते जी मुक्त हो गया। कभी कभी घर में कमेंट आते हैं, तू तो बेटा मुझे जीते जी मार दे रहा है, सुना है सर? बहुत सारे डायलॉग होते हैं। तो इसी तरह जैसे जीते जी लोग मार देते हैं, ऐसे हम आपको जीते जी मुक्त कर देंगे। जीते जी मुक्त है, मतलब है शरीर में लेकिन वह मुक्त है। तो ये बड़ा सुंदर भक्ति का जो है रहस्य है, लोग समझ नहीं पाते। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, कुछ भी कर्म बंधन से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे अगर भगवान की सेवा में लगे हुए। इसलिए बड़े उत्साह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जो गृहणियां घर में रह रही हैं और जो ब्रह्मचारी घर में रह रहा है, उस पे कोई अंतर नहीं है। ये कैसे बोल रहे हैं आप, अंतर कैसे नहीं है? क्योंकि घर में आप कृष्ण की ही सेवा कर सकती हो। भाई पति को तो जरूर है कि बाहर जाकर कुछ और काम करना पड़ेगा, लेकिन जो घर में रह रही हैं, आप भगवान की सेवा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, मंदिर सफाई कर रही हैं, घर सफाई कर रही हैं, सारा कुछ भगवान की सेवा में है, अगर थोड़ी बुद्धि लगाएं तो। हाँ, घर में आप सुबह सोते रहेंगे कोई 6 बजे तक तो अलग बात है, लेकिन और अब कोई पुरुषों की बात करें कि वो नौकरी भी कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि घर परिवार में भक्ति होती रहे, तो वह भी जो उनकी जो नौकरी है वह भी भक्ति हो जाती है, उससे कर्म बंधन नहीं लगता। प्राय लोग नौकरी क्यों करते हैं, बड़ा मकान होगा, बच्चे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगर ये उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति करें, तो वह जो आपका नौकरी है वह भी भक्ति का एक अंग बन जाता है। लेकिन सुबह घर में आने के बाद केवल भक्ति ही चलना चाहिए, टीवी नहीं चलना चाहिए। मैं खाली बातें बोल रहा हूं कहने के लिए कि भगवान की सेवा करने में अपने आप ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसको कोई खास तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद इसके बाद बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब ये जगत नष्ट होगा तो देवता अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो जब वो स्वयं ही मुक्त नहीं है तो वह अपने उपासकों को कैसे मुक्त कर सकते हैं। इस संबंध में एक उक्ति कहूंगा भागवत की, जो सुनने में बड़ी कठोर लगती है लेकिन स्वयं देवताओं ने कही। देवता जब वृत्तासुर से परेशान हो गए तो भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, एक बात वो कहते हैं कि जो कोई देवताओं की शरण लेकर के मुक्त होने की अभिलाषा रखता है उसकी स्थिति कैसी है कि कुत्ते की कोई पूंछ पकड़े और कोई कहे कि वो समुद्र पार करा दे, वो कुत्ता भी डूबेगा और वो आदमी भी डूब जाएगा। ये स्थिति अब कहेंगे ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, देवता ही बोल रहे हैं। तो ये स्थिति है। और भगवान की कोई शरण लेता है चरण कमलों की तो ये जो पूरा संसार सागर है वो कैसा छोटा हो जाता है, बिल्कुल बछड़े के जो खुर का समान हो जाता है, लांगा कौन सी मुश्किल बात है। तो ये बात है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसी कारण से मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, उसे कोई फायदा नहीं होने वाला यद्यपि वे इसके प्रति असम्मान नहीं दिखाते, अर्थात जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो करें, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। ओके, श्रीला विश्वनाथ शिव ठाकुर जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं अनसूय वे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वो देवता के उपासकों की और देवताओं की वो निंदा नहीं करते, अरे शिव जी क्या है ऐसा करके, ये गलत है, कभी भक्त इस प्रकार से नहीं करते। अब अगर आप लोग थक न गए हो तो एक श्लोक और हल ले सकते हैं या फिर हम लोग। हाँ प्रभु, देवताओं के उपासकों को क्या हमें प्रीचिंग करना चाहिए? देखिए हमें उस व्यक्ति को प्रीचिंग करना चाहिए जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो, चाहे वो देवताओं का उपासक हो या नहीं हो। मैं तो किसी का उपासक नहीं था तो इसलिए ये बात है जो सुनने के लिए तैयार हो। मैं अच्छा, यहां पे से कोई भक्त हैं जो पहले किसी अन्य देवता की उपासना कर रहे थे, भगवान कृष्ण की कर रहे हैं, पहले विष्णु सभी लोग करते थे, तब तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे एक भक्त हैं वो शिवजी की उपासना करते थे, अब वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो जब हम फिलोसफी को सुनते हैं ठीक से तो लोग हमारे पास तो प्रभु हनुमान जी की पूजा करते थे, कहते थे मैं लड्डू चढ़ा के आता था कि पास हो जाऊं हनुमान जी पास करा देना ऐसे। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जब कोई देवता की उपासना करता है अगर वो निष्काम भावना वाला रहता है, इनोसेंट रहता है, तो देवता स्वयं व्यवस्था करते हैं कि वह भगवान के पास आ जाए। शिव जी हनुमान जी सब भक्त हैं, वो कुछ ऐसे व्यवस्था कर देंगे कि वह भगवान के पास आ जाए। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कथा को लिखते हैं, एक व्यक्ति शिव जी की उपासना करता था और वो कहता था मुझे सबसे अच्छी वस्तु चाहिए। तो शिव जी ने कहा सबसे अच्छी वस्तु चाहिए तो तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ। तुम सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं तो सनातन गोस्वामी के पास एक मणि थी, पारस मणि, आप जानते हो उस कथा को। तो पारस मणि के बाद उन्होंने कहा वो कचरे में पड़ी हुई है तो लेके चला गया। उसके बाद वो बाद में उसने थोड़ा बुद्धि थी, उसने कहा अगर सबसे अच्छी वस्तु है तो कचरे में क्यों डाला। तो फिर सनातन गोस्वामी के पास आए और बोले कि कुछ और है आपके पास स्पेशल। तो उन्होंने कहा पहले से फेंक के आओ यमुना जी में फिर बताऊंगा। तो फिर उन्हें हरे कृष्ण मंदिर दिया। देखिए ये अनुभूति मुझे भगवान की कृपा से बहुत हो रही है कि भौतिक भोगों से मैं सुखी नहीं हो सकता एकदम। मतलब जैसे बाली गया था बिल्कुल स्वर्ग जैसा वातावरण, अब स्वर्ग तो देखा नहीं है लेकिन जो देख के समझता, कोई केमिकल नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, सब बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। जो हरे कृष्ण मंत्र का दिव्य सुख है वह एक भगवान एक महक दे रहे हैं, मैं तो कहूंगा मुझे हल्की सी महक दे रहे हैं, हल्की सी महक, पूरा तो भगवान ने अभी डिब्बी खोली ही नहीं है, हल्की सी खुशबू, एक हल्का सा टेस्ट, और वो पागल क्या देता है, लगता है ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान कुछ फॉर्मूला बता दीजिए, भगवान बोलते नहीं, मेरे से बस ये दिक्कत है बेटा, शुक्रिया तुम यहाँ अपराध कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, ये मत करो और ये कर दो तो तुमको रोज मैं टेस्ट दूंगा, ये भगवान वैसे तो बता रहे हैं त्रिनादपि सुनिश्चित हो जाओ, लेकिन वह भी मुश्किल होता है। लेकिन रियली एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है ना जब अच्छे से होता है। और ऐसा कोई अनुभव नहीं है जगत में हमें रसगुल्ला खाने का, ना गुलाब जामुन खाने, कुछ ऐसा अनुभव नहीं है। तो उससे देख करके हमको बहुत विश्वास होता है कि भक्ति ही करनी है। अन्य देवताओं की उपासना वालों को कभी ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ, किसी को पूछ लीजिए आप, किसी को पूछ लीजिए।
राम द्वारे हनुमान जी के बारे में लिखा रहता, राम द्वारे तुम रखवाले,
राम द्वारे तुम रखवाले, ठीक है। राम द्वारे तुम रखवाले मतलब राम के द्वार पे तुम रखवाले हो, ठीक है, तो सही बात है, भगवान राम के सेवक हैं तो क्या दिक्कत है। हनुमान चालीसा कम धन्य के, इतनी बात सीधी समझ में आती है कि हनुमान जी के हृदय में कौन है, भगवान श्री राम। एक बात बड़ी अच्छी एक कोटेशन है शिव जी का, मैंने कई बार बोला इसको, कोई रा बोलता है, कोई रा बोलता है तो शिव जी कहते हैं क्या वो माँ भी बोलेगा, इतना उनका आग्रह रहता है। कहीं गलती से किसने बोल दिया अरे रा, माँ बोलेगा क्या ये, ऐसा शिव जी का जो है उस आग्रह रहता है। तो अगर शिव, यही आप लोग मोहिनी मूर्ति वाली लीला भी आप जानते हो वो क्यों हुई थी पता है आपको, शिव जी से पार्वती जी ने पूछा किसका ध्यान करते हो, जो पूरी लीला हो गई तब शिव ने कहा आप जानते हैं, पूछ रही थी ना कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, यही भगवान विष्णु संकर्षण है इनका मैं ध्यान करता हूँ, ये दर्शाने के लिए शिव जी ने सब लीला करवाई थी। तो शिव जी हों या हनुमान जी हों चाहे कोई भी हो, सब लोग भगवान राम की विष्णु की संकर्षण की पूजा करते हैं, यही तो हम श्लोक में सीख रहे हैं। ये हमारे हनुमान जी पूर्ववर्ती है ना, हमारे आग्रह पहले हो चुके हैं, किसका भजन कर रहे हैं, भगवान श्री राम का भजन कर रहे हैं, तो भगवान राम का, कृष्ण का, लक्ष्मण जिसका भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से कीजिएगा। अभी 6:10 है, क्या करें, हम रुक जाए, रुक जाए, एक श्लोक और देख सकते हैं। एक इस श्लोक में बताया जाएगा, ये हम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बताता है कि क्यों लोग अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जो अलग अलग प्रकार की पूजा है वह क्यों करते हैं, इसको सीखेंगे। 27वां श्लोक, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रिय ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। जो लोग रजगुण तथा तमोगुणी हैं, रजस तमः प्रकृतयः, जिनकी प्रकृति, जिनका चित्त, जिनका हृदय रजगुण और तमगुण, रजगुण मतलब बहुत बहुत एक लालसा, तमगुण का प्रभाव होता है आलस, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कंफ्यूजन, ये सब, यह जो जिनकी प्रकृति होती है, जिन लोगों की ऐसी प्रकृति होती है, समशीला भजन्ति वै, वो वैसे ही देवताओं की पूजा करते हैं जिनकी वैसी प्रकृति होती है। समझ में आ रहा है, जिसकी खुद की रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति है वह ऐसे ही भूत प्रेत इत्यादि और जो भी तमोगुणी रजोगुणी लोगों की पूजा करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर के लोक के जैसे मान लीजिए भूत प्रेत हैं, ये मनुष्य से श्रेष्ठ हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि गुणों से मुक्त हैं, यह भी तमोगुणी होते हैं, भूत प्रेत हैं सब तमोगुणी होते हैं, भले हमसे श्रेष्ठ हैं लेकिन वो तमोगुणी होते हैं। तो उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति क्यों पूजा कर रहा है, क्योंकि वह तमोगुणी है, मैं तमोगुणी हूं इसलिए ऐसे देवता की उपासना कर रहा हूं जो इन गुणों के से प्रभावित है। नहीं समझ, भगवद्गीता दीजिए मेरे को समझ में आ जाएगा, गीता है इसमें नहीं, भगवद्गीता में इस बात को बोल रहे हैं, रुकिए बता रहा हूं, ये देखिए रजस तमसी प्रकृति स्वभाव ये शामते, श्रीधर स्वामी कहते हैं जिनकी रजगुण तमगुण की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है उनका, वो लोग अतेव इसलिए पितृभूतादि भी समशीलम ये शाम, इसलिए पितरों की और भूत आदियों की पूजा करते हैं जिनकी समशीला, उनकी प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की होती है। अब इस चीज को हम भगवद्गीता में देखते हैं, भगवद्गीता में श्रद्धा के विभाग नामक चैप्टर है और उसमें इसका वर्णन किया गया है कि लोग विभिन्न प्रकार के देवता की उपासना क्यों करते हैं। तो देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट रखा है, सत्वान रूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो ये श्रद्धा स एव स, जिसका सत्व जिसका हृदय जैसा होता है उसकी श्रद्धा उसी प्रकार की होती है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब वो कह रहे हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसः, जो यक्ष राक्षस होते हैं वह उन लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं जो राजसिक होते हैं। तो ये रक्ष और राक्षस सत्वगुणी नहीं होते, ठीक। प्रेतान भूत गणांश चानिय, जो प्रेत और भूत होते हैं ये तमोगुणी लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, तो क्या प्रेत और भूत सत्वगुण में होते हैं, नहीं होते हैं, वो तमोगुण में होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? और जो लोग देवताओं से इंद्र इत्यादि की पूजा करते हैं तो सत्वगुण में माने जाते हैं, लेकिन जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह शुद्ध सत्व में प्रकृति करते हैं। अब आपका डाउट क्या है? अब इनका पहला प्रश्न यह है कि देवता क्या गुणों से प्रभावित होते हैं। सातवें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुणों से प्रभावित ना होता हो। देवता अगर हम बोल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि देवता को आप केवल इंद्र के रूप में ले रहे हैं। अगर इंद्र इत्यादि देवता लेंगे तो वो सत्व प्रधान है, सत्व प्रधान है। ऐसा नहीं है कि रजगुण से प्रभावित नहीं होते, नहीं तो अहल्या का तो इंद्र ने ही परेशान किया था, गौतम ऋषि की पत्नी, और ऐसे कितनी बार ऐसा वो कर चुके हैं। तो रजगुण के कारण ही तो काम वासना से प्रभावित होता है व्यक्ति। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंद्र जो है गुणों से पूरी तरह से मुक्त है। केवल शुद्ध जो भक्त हैं भगवान के वही गुणों से मुक्त होते हैं। तो ये एक बात है। अब आप कहें कि यक्ष राक्षसों की बात करें तो ये सब तमगुण होते हैं। हमारे एक भक्त हैं, इनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन पहले तंत्र मंत्र करते थे बहुत जम के, तो वो सब बताते हैं कि जितने भी ये सब भूत प्रेत होते हैं जो लोग पूजा करते हैं सब तमगुण में ही रहते हैं। नहीं तो ये मांस इत्यादि की वह क्यों स्वीकार करेंगे, क्या कहेंगे उसको, बलि क्यों स्वीकार करेंगे? जितनी भी बलियां दी जाती हैं मांस इत्यादि की वह क्यों स्वीकार करेंगे? तो यह सब अभी कुछ आपके मन में संशय लग रहा है। यह संशय क्या है? भूत प्रेत अगर तमोगुण में है, मानव से श्रेष्ठ कैसे हैं? क्योंकि इनके पास शक्तियां हैं। देखिए तमोगुण में हैं, तमोगुण से प्रभावित हैं, फिर इनके पास विशेष शक्तियां हैं। ये चीज भागवत में बताई गई है, कैटेगराइजेशन दिया गया है। वो उनके पास इंसानों से अधिक शक्तियां होती, तो इस कारण से शक्ति भौतिक रूप से शक्ति अधिक है, इस कारण से वह श्रेष्ठ बोले गए हैं। चेतना की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं बोला जा रहा। यस, भूत प्रेत हमसे उच्च लोक में है, ये सब बातें सत्य हैं, लेकिन मैं खाली बस ये बोल रहा हूं कि जिस मैं नहीं बोल रहा हूं, सामने टीका में रखा गया है सब बात बोला कि समशीला भजनते हुए उनकी भी ऐसी प्रकृति होती, तो इस कारण से वह उनको पसंद करते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुने ना क्या कहते हैं उसको, एक जैसे पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। पितृ भूत प्रजेशादीन, पितृ तो आप समझते हो पितृगण, भूत मतलब अन्य जीव, प्रजेश आदीन मतलब प्रजापति इत्यादि, इन लोगों की पूजा करते हैं। किस लिए? श्रेय मतलब संपन्नता, ऐश्वर्य यानी शक्ति और संतान इत्यादि के लिए। इप्सभा का अर्थ होता है इच्छा करते, क्योंकि हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं इसलिए इन देवताओं की पूजा करते हैं। जो लोग रजगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ये आपने देखा है कभी इस प्रकार से लोग करते हुए कि किसी की संतान नहीं होती है तो कहता अरे उसकी पूजा कर लो तो संतान हो जाती है? ये बहुत बार आप समाज में देखते हैं इस प्रकार से लोग करते हुए, और उनसे पूछो भाई भगवत धाम जाने के लिए कुछ कर रहे हो? क्या वो छोड़ देगा, भगवत धाम कौन जाएगा, क्या ऐसा फालतू किसने देखा है ऐसा वैसा करके बोल देंगे। हाँ डरते हो रहे, और नहीं डरते भी हैं और बोल देंगे अरे भाई सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी। बहुत मजाक कर रहे थे वृंदावन चंद महाराज की, ये बताओ जितने लोगों ने शादी करी है सृष्टि चलाने के लिए कौन शादी किया है? कि सृष्टि नहीं चल रही तो शादी करें और ऐसा सृष्टि चलती रहे? नहीं, अपनी इच्छा के चलिए, उस पर कोई कमेंट नहीं। हाँ हाँ, जेल खाली हो जाए तो सरकार को कोई टेंशन होगी, नहीं तो कोई सोचे अरे भाई जेल कम हो रही है, भरतपुर में कैदी कम हो रहे हैं, चलो मैं दो चार लोगों का मर्डर कर दूं भाई जेल भरे, तो कोई ऐसा तो कोई सोचता नहीं है ना। तो भगवान तो नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि जेल भरे, लेकिन कुछ ऐसे महात्मा होते हैं जैसा कार्य करेंगे जिनको जेल में जाना पड़े, तो भगवान की कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है कि अगर किसी के पास कामधेनु गाय है करोड़ों करोड़ों, तो उसकी बकरी खो जाएगी तो उसे कोई फर्क पड़ेगा? तो ऐसे ही भगवान के पास अनंत आध्यात्मिक जगत है, उनकी भौतिक जगत पूरा समाप्त भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रहलाद की कृपा हो गया, ठीक है तात्पर्य पढ़ते हैं। पहली लाइन प्रभुपाद की बड़ी ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ा अच्छा होता है, अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हो गंभीरता से तो देवता की उपासना करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो लगे रहो। वो एक सीधी सीधी सोच लो, एक एक इच्छा को देख लीजिए, कोई कहे कि पत्नी प्राप्त हो जाएगी सुखी हो जाएगा, जितनों की पत्नी है वो सुखी है, पूछ लीजिएगा, इंटरव्यू ले लीजिएगा, ठीक। कोई कहे बहुत सुंदर पति मिल जाएगा तो सुखी है, जिनके पति उनका इंटरव्यू ले लीजिएगा भाई। कोई कहे बच्चे हो जाएंगे तो बड़े सुखी है, नरे ने बच्चे हो जाएंगे तो जिनके बच्चे होंगे उनसे पूछ लीजिए, और बताए ना अलग बात है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वैसे सब हम सब बातें ब्रह्मचारी क्लास के लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती कि पिताजी शादी करके सुखी नहीं हुए, माताजी शादी करके सुखी नहीं हुए, लेकिन लड़के को शादी करना चाहते हैं। ये लॉजिक समझ में नहीं आता मेरे, है ना भाई। जैसे मैंने हलवा खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं खाया और तुम भी खाओ, अब मैं हलवा खाऊं उसमें चीनी नहीं है, अब मैं कहूं तुम भी खाओ और चीनी छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नमक पड़ा हुआ है, अब वो कह रहे तुम भी खाओ, क्यों बोल रहे हो, अरे मेरे लड़के हो बेटा, तुम्हारा हित चाहता हूं, तुम भी खाओ ये बात मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आती कि कोई तब दुखी दुख झेल रहे हैं फिर भी यही पुश किया जा रहा है कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, है ना। ये माया भगवान की, तो खैर आपको देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। उसका प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जो लोग भोगों के पीछे पागल हैं वह भगवान की नहीं पूजा करते। कामस्तैस्तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमावस्थाया प्रकृत्या नियता सोया। काम के कारण उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहे वो कौन है, इसलिए देवताओं के पास आते हैं और उसके अनुसार अपनी नियम पालन करते हैं, ये पूजा करो ये पूजा करो ये मिल जाएगा। ये बात है, बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद बोलते हैं, कह रहे हैं कि हमें भोग की इच्छाओं को कभी प्रबल नहीं बनने देना चाहिए, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस ये दे रहे हैं कि ना तो देखिए सब तक शरीर है, शरीर चलाने के लिए आपको चाहिए, तो ना तो कम स्वीकार करें और ना बहुत अधिक स्वीकार करें। बहुत 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 अच्छी बात है। अब आपको जाड़ा लग रहा है, मैं कहूं भाई भोग भोग नहीं करना चाहिए, प्रभु जी नहीं बोला भोग नहीं करना चाहिए तो मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, हो गए बीमार, अब उसके बाद आप जो है कुछ आपका हरी नाम जब भी नहीं हो रहा है तो इतना भी अच्छा 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 ठीक है ठीक है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए तो अब 15 स्वेटर खरीदूंगा मैं, ताकि मैं अब 15 स्वेटर खरीदने के बाद क्या होगा पता है क्या होता है, हर स्वेटर आपको बोलेगा अरे तो देखो 2 हफ्ता हो गया आपने मुझे पहना ही नहीं, पता नहीं आप लोग समझते हो कि नहीं, मैं तो दूसरा स्वेटर खरीद लेता हूं ना तो वो स्वेटर बोलता रहता है आपने मुझे पहना ही नहीं, मेरा सेवा मेरा कब सेवा लेंगे आप, तो आपका चित्र को ड्रॉ करता रहता है। यहां तक कि वो दवाएं जो मैं खाता नहीं, जो मैं जैसे मान लीजिए मुझे कुछ बीमारी है और वो दवा रखी है, वो दवा भी बोलती रहती है आपने मुझे कोई खाया नहीं बहुत देर से, अच्छे मैं बीमार नहीं हूं तो क्यों खाऊं, लेकिन सिग्नल आता रहता है कॉन्स्टेंटली। इसीलिए एक ब्राह्मण अपने वस्तुओं को बहुत कम रखता है। क्या आप लोग अनुभव करते हो इस बात को, अपने घर में गृहस्थ भक्त यहां बैठे हैं आप अगर एनालिसिस करने लग जाए कितनी वस्तुएं हम बिल्कुल यूज ही नहीं करते, घर में बस पड़ी रहती, कोई उपयोग नहीं करते, तो वह सब हमारे चित्त को भगवान से अलग करती है। तो इसलिए कम रख करके भगवान में चित्त लगाना चाहिए, उसको उसमें सेवा करना चाहिए। शास्त्र रखिए खूब, भागवत रखिए, चैतन्य चरितामृत रखिए, तब चैतन्य चरितामृत बोलेंगे अरे तुमने मेरे को पढ़ा नहीं है, हाँ पढ़ूंगा पढ़ूंगा अभी पढ़ता हूँ, गीता देखेंगे तो गीता नहीं पढ़ी है, ये भागवत देखेंगे तो मैं तो ऐसे अपने सब तरफ रूम में आप देखेंगे सब शास्त्र भरा हुआ है, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा है ये भी पढ़ना है मुझे वो भी पढ़ना है, तो यह कोई दिक्कत नहीं है। माला तो जरूर सामने होनी चाहिए ताकि वो बोलती रहे तुमने जप नहीं किया है जप नहीं किया है जप पूरा कर लो, लेकिन इस प्रकार से बहुत आवश्यक है कि हम अपनी अवस्थाओं को आवश्यकताओं को बिल्कुल ना बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि भोग अपनाने का अर्थ है जगत में और बंध जाना, और जितना व्यक्ति बंधेगा उसको और धन चाहिए होगा और स्त्रियां चाहिए होंगी और झूठी कुलीनता, फॉल्स एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी। एक भक्त बोल रहे थे प्रभु जी उस IAS के यहाँ पे 80 IAS आए थे शादी में, अच्छा हमने कहा एक भी IAS को पता है कि वह शरीर नहीं आत्मा, तो ऐसे लोग इकट्ठे हो भी जाएं तो उसे क्या फर्क पड़ता है। मेरे को सही में सच्ची बात है, मेरे रूम में एक भक्त आए जिन्होंने स्वेटर स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने एक व्यक्ति को फोन किया मेरे को, वो उनसे दारू नहीं छूट रही थी और वो IAS ऑफिसर, और धड़धड़ धड़धड़ मैंने बोलना चालू किया आप नरक जाओगे आपको नरक जाना चाहते हो क्या, ये वो सुन रहे थे कोई प्रत्युत्तर नहीं, मैं क्या करूं, उन्होंने कहा हरे कृष्ण मान जप करिए। सो देखिए वह व्यक्ति भी उतने ही इंद्रियों के प्रबल चपेट में है जितना एक रिक्शे वाला, सोचने वाली बात है ना। अब मैं और कठोर बोलने वाला हूं आप लोगों पे नहीं, मुचकुंद महाराज पूरे विश्व के राजा थे, क्या सुनना चाहेंगे वो क्या बोले थे, बड़ा कठोर वचन बोले, कह रहे कि हम पूरे विश्व को जीत के आते थे लेकिन रानी के सामने घुटने टेक देते थे। समझते इसका अर्थ? तो इंद्रिय संयम करना इतना कठिन है, देवताओं तक के वे सेनापति बन गए थे, सबसे कठिन है इंद्रियों को संयम करना। तो इसके लिए जीवन को हमें लक्षित अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को संयम करके भगवान के धाम की ओर प्रगति करें। ठीक है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, जो भी भक्त को अपनी भक्ति करने के लिए चाहिए वह भगवान विष्णु की पूजा करने से उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है कि यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो भौतिक संपन्नता तो आएगी ही आएगी अपने आप, देखे सुने न भक्त भिखारी, महाराज बोलते हैं। समझ में आ रही बात? आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, आप भौतिक इच्छा चाहो या ना चाहो वो तो पीछे लग के आएगी। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण है, कह रहे हैं कि जैसे गाय के पीछे सांड भागता है, उस प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके पीछे जो भौतिक सुख सुविधा है वो पीछे अपने आप आएगी। जाने थोड़ा देगी माया आपको इतनी आसानी से। कोई हरि नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसे अपने आप भौतिक मिलती रहती है। मैं उदाहरण दे रहा था कि मैं रूम में रेस्ट कर रहा था, अगले दिन सुबह देखा ये स्वेटर आ गया है। मैं नहीं, मैं शायद यहाँ पे प्रीचिंग करने आया था, हाँ यहीं पे आया था, पिछले 15 दिन पहले की बात होगी। तो भक्त आए और दूसरे ब्रह्मचारी को दे गए, वो रात में डाल के चले गए सेंटा क्लॉस की तरह। तो मैंने कहा जो हमारे भगवान, जबकि मेरा पहला वाला स्वेटर फटा भी नहीं है लेकिन दूसरा स्वेटर अपने आप आ गया। मैं खाली बोल, आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। जो हमारे भाग्य में है वो आएगा ही, वो आएगा ही। इस प्रकार से दुख भी आते हैं, और लेकिन स्पेशली आपके अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति की सारी सुविधा उपलब्ध है। प्रभु जी हम वृंदावन जाना चाहते हैं, कहां हमें मकान अवेलेबल है? है अवेलेबल, हमारे फार्म में आ जाओ। अरे खाने की व्यवस्था कौन करेगा? खाना भी फ्री है। अरे बिजली? बिजली भी फ्री है। हीटर मिलेगा क्या? हाँ हीटर भी है, गीजर भी है। आप नहीं हो सारी सुविधा है, हम नहीं है वहां पे। बस सिक्योरिटी है क्या? हाँ सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, हम नहीं है। जीवन भर हाँ प्रवेश करिए और उसके बाद अर्थी बाहर निकलेगी चाहे तो, और उसके बाद आप चले जाओगे भगवान के धाम। तो सारे वानप्रस्थियों को इन्विटेशन, इनके पिताजी आ गए, रह रहे, सेवा कर रहे, पत्थर नहीं चलवा रहे कुछ उनसे, माला जब करो अपना सेवा करिए। तो जो अब मैं इतना खुश हूं कि जो सुविधा मेरे को प्राप्त है, कई बार बोलते थे अरे हमारे परिवार को रखेंगे क्या, मैं तो क्या रोने माता जी को, ब्रजेंद्र प्रभु हमसे कई बार टॉन्ट मारते, अरे आप लोगों को तो रहने को मिल जाता है, गृहस्थों कहां रखेंगे, तो आओ भाई रहो। तो अब ये तो हमारी दिक्कत है कि हम रहना नहीं चाहते वो ब्रज में, वो अलग बात है। लेकिन कहने की बात यह है कि भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं, चलो आओ या नहीं आओ, यहीं रह के भजन करो, लेकिन द्वार सबके लिए खुले हैं, भगवान सेवा करेंगे, जो भी आपको आवश्यक हो सब प्राप्त है। इस बात को भगवान गीता में 8वें अध्याय में बोलते हैं आखिरी श्लोक में, कि जो भी यज्ञ तपस्या करने से सुविधा प्राप्त होती है, पुण्य प्राप्त होता है, वह भक्ति करने से अपने आप प्राप्त हो जाता है। और पुण्य करने से ही हमको भोग, जितने भी जगत के भोग है वो प्राप्त होते हैं। तो देवताओं की पूजा नहीं करते, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग संतान चाहते हैं, भौतिक भोग चाहते हैं, बड़ा अच्छा कमेंट प्रभुपाद कह रहे हैं, जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। कितना अमेजिंग लाइन है, आप देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम खूब इकट्ठा कर लेंगे, खूब इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी दुख कम हो जाएंगे, नहीं वही दुख का कारण है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो सोल्यूशन आप सोच रहे हो आपके दुख के निवारण का, वही आपके दुख का कारण बन जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, लेकिन उसके विपरीत होता है, सुख के लिए लोग कर्म करते हैं लेकिन उसके विपरीत सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ विपरीत हो रहा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए। फिर महाराज बता, सॉरी प्रभुपाद बता रहे हैं, भोग के लिए भी देवताओं के पास आने की जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए श्रम करें, मेहनत करें। जब हम इस प्रकार का प्रवचन करते सोचते हैं कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के लिए काम करिए, भगवान के लिए मेहनत करिए, भजन करिए, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि उस श्रम का फल भगवान को जाना चाहिए, उस सेवा का फायदा भगवान को जाना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान की कोई सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच पाएगा। और लास्ट में प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको पढ़ लेंगे। इसी जो चीज आसान है उसको मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा। आप जानते हो कि गोवर्धन जो लीला हुई थी उसमें भगवान ने देवता इंद्र की उपासना बंद करी, यही दिखाने के लिए कि भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की उपासना ही भक्तों को करनी चाहिए, अन्य देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। और एक और दिक्कत इसमें हो जाती है कि कभी कभी लोग सोचने लगते हैं कि देवता जो है वो स्वतंत्र ईश्वर है, भगवान से स्वतंत्र होकर के हमें कुछ दे सकते हैं, ये धारणा हो जाती है, ये गलत है। उसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ पे लास्ट में समझा रहे हैं, लास्ट लाइन है, वो कह रहे हैं कि जितने भी अन्य देवताओं की उपासना करने वाले धर्म हैं वह कैटव धर्म है, वह चीटिंग धर्म है, क्योंकि इससे आत्मा को सुख प्राप्त नहीं होगा। चीटिंग समझते ना, मैं बोलूं कि भाई इस बोतल में अमृत भरा है, मुझे आप 5,000 रुपये दीजिए, और जब आप उसे ढक्कन खोल के पियेंगे तो कहेंगे तो पानी है, इसे कहते हैं चीटिंग। तो आत्मा को जो सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है वह कैसे प्राप्त होगा, अहेतु की अप्रतिहता, बिना निष्काम रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति की जाए, लगातार किया जाए, तब आत्मा को सुख प्राप्त होगा। ये हर चीज में होता है, मतलब भक्ति की किसी भी अंग में, आप हरि नाम कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वह ना बता करके इसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लो, वहां चले जाओगे, वहां चले जाओ, कहीं भी आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता है, और ये सब देव उपासना से होने लगता है। तो क्यों करते हैं, समशीला भजंती वे, उनकी प्रकृति ही उसी प्रकार की होती है, इस प्रकार से वह अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वह भगवान की पूजा ही सिखाते हैं, भगवान की पूजा करो, इसी से हमारा परम कल्याण हो सकता है, अन्य किसी की नहीं। विश्वनाथ चकोरी ठाकुर जी क्या कहते हैं, यस, वो कहते हैं प्रकृति, हम मतलब भाई पितृ और जो अन्य देवता हैं उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव इसी प्रकार का होता है। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, स्टॉप। कोई एक मिनट, कोई प्रश्न है किसी, प्रश्न, यस प्रो। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। देखिए धर्म, ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी शायद, बहुदेव पूजा मतलब ये प्राप्त करने के लिए तुम इसके पास जाओ, ये प्राप्त करने के लिए इसके पास जाओ। दूसरे स्कंद में आप शुरुआत में ही देखेंगे सुखदेव को हम इस बात को बोल रहे हैं कि कोई ये चाहता है तो दुर्गा जी की उपासना करे, ये इच्छा है तो इसकी पूजा करे, संतान चाहता है तो इसकी पूजा करे, स्वास्थ्य चाहता है तो इसकी पूजा करे। लेकिन वस्तुतः यह है सच्चा धर्म नहीं है, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्र न भक्ति योगी न यजेत पुरुषा परम। जो सच्चा उदारधि व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, चाहे उसके अंदर सारी कामनाएं क्यों ना हो, चाहे वो निष्काम हो और चाहे वो मोक्ष चाहता हो, वह अगर बुद्धिमान है तो भगवान की पूजा करेगा, भगवान की ही पूजा करेगा। तो ये सच्चा धर्म है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भगवान भौतिक वस्तुएं देते हैं साथ साथ अच्छी मति भी देते हैं कि देखो भाई इससे तुम संतुष्ट नहीं होने वाले हो। देवता अगर देते हैं तो देते हैं मति? नहीं। आप प्रत्यक्ष देखते हो शिव जी ने रावण को लंका दिया लेकिन दिमाग नहीं दिया कि राम भगवान से पंगे मत लो। बहुत लोगों ने बोला भी, ये रावण नहीं कह सकता था कि मेरे पास कंसल्टेंसी नहीं थी, बहुत अच्छी कंसल्टेंसी थी, सबने बताया कि राम भगवान राम से पंगे मत लो। ये लीला पता है ना आपको कि वो है नीचे के लोगों में गया था बलि महाराज से, भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए हेल्प मांगने के लिए, सुना ही लीला आपने, बड़ी अच्छी लीला है, बड़ी मजेदार लीला है। तो उसके बाद बलि महाराज ने कहा वो ये देख रहे हो ये क्या दिख रहा है? कहता ये पर्वत है, सोने का पर्वत, दोबारा ध्यान से देखो क्या है, कह रहा है ये कुंडल जैसा लग रहा है, सोने का कुंडल जैसा लग रहा है। तो बोले पता है किसका कुंडल है? किसका? कहते हिरण्यकशिपु का। उस हिरण्यकश्यप का कुंडल है जो तुम्हें पर्वत की तरह दिख रहा है, उसको भगवान विष्णु ने मार दिया, वही राम के रूप में आए, इनसे युद्ध मत करो। अब इतने से ज्यादा कौन समझाएगा, लेकिन फिर भी उस बुद्धू को समझ में नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान की जो भी भक्ति करता है उसकी बुद्धि बिल्कुल सही हो जाती है, सभी का अनुभव है भगवान की भक्ति करने से। तो ये भगवान के संग स्पेशल गुण है कि भगवान देते हैं भौतिक वस्तु लेकिन सही मति देते हैं, व्यक्ति समझ जाता है कि इससे मेरा कोई सुख प्राप्त नहीं होता। कुछ अपने मन में संशय? ठीक है, चलो स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्टॉप। हम लोग भगवान का कीर्तन